दसम अध्याय काव्य शिक्षण। काव्य का स्वरूप। कहा जाता है कि किसी भी भाषा का आदि साहित्य हमें कविता के रूप में मिलता है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं के साहित्य को देखने से इस कथन की सत्यता भी प्रमाणित हो जाती है। कविता के सौंदर्यानुभूति से कविता से सौंदर्यानुभूति होती है और मनुष्य का हृदय सदा से सौंदर्य पर रीझता रहा है। इसीलिए जितना अधिक कविता हृदय को स्पर्श करती है उतना अधिक साहित्य की अन्य विधाएं नहीं कर पाती हैं। कविता कवि के हृदय से निकलती हैं और पाठक के हृदय तक सीधी पहुंचती हैं। जब किसी घटना या विचार पर कवि का हृदय रसातिरेक से विभोर हो उठता है तो उस समय रस कविता के रूप में फूट पड़ता है। ऐसी ही घटना तो आदि कवि वाल्मीकि के समक्ष घटी थी। कामातुर की क्या दशा होती है यह सभी जानते हैं। क्रौंच का एक कामातुर जोड़ा विहार करने जा रहा था कि उसी समय एक व्याघ्र ने वाण से क्रौंच को मारने की चेष्टा की। क्रौंच बाण से बचने का प्रयत्न करता रहा था और उसकी दशा को देखकर उसकी स्त्री करुणाजनक विलाप कर रही थी। महर्षि यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। करुणाउद्रेक ने ऋषिवर के मुख से अचानक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम महा शाश्वती इस समाह यत क्रौंच मिथुना देकम वधो काम मोहितम। इसी प्रकार की रसानुभूति से कविता का जन्म होता है। इसी आशय का विचार प्रकट करते हुए ध्वन्यालोक में ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य लिखते हैं, काव्यस्य आत्मा स एवार्थः स चाविकवयः पुरा। क्रौंच द्वंद वियोगोत्तः शोकः श्लोकम् मागतः। उपर्युक्त श्लोक में ध्वनिकार स्पष्ट करते हैं कि क्रौंच के जोड़े के भावी वियोग से आदि कवि के हृदय में उत्पन्न शोक ही श्लोक के रूप में बाहर आ गया। कवि के हृदय में उत्पन्न रस ही वस्तुतः कविता के रूप में बाहर आ गया। विश्वनाथ कविराज ने भी कहा है, वाक्यम रसमात्कम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। कविराज के अनुसार काव्य की आत्मा रस है, किंतु ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य ने रस को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसे काव्य की आत्मा नहीं माना है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्यस आत्मा ध्वनिया। अन्य आचार्यों ने काव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए अपने पृथक मत व्यक्त किए हैं। आचार्य वामन कहते हैं, रीतरात्मा काव्य। रीतियां तीन होती हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। ये रीतियां ध्वनि से संबंध रखती हैं। हमारे कानों पर विभिन्न ध्वनियों का जो प्रभाव पड़ता है रीति उन्हीं प्रभाव से संबंधित हैं। इसी दृष्टि से वामनाचार्य एवं आनंद वर्धनाचार्य पर्याप्त निकट आ जाते हैं। काव्य के ऊपर विचार करते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने शब्द की शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात वह शब्द जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे काव्य है। जहाँ तक रमणीयता का संबंध है, कविवर कालिदास की निम्नलिखित पंक्ति को याद दिला देना ही पर्याप्त है, क्षणे क्षणे यन्वता मुपैति तदेव रूपम रमणीयतायः। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, तद दोषः शब्दार्थो सगुण वन वलन कृति पुनः क्वापि, अर्थात अदोष सगुण प्रायः अलंकृत पर यदा कदा अनलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। भामह, रुद्रट और उद्भट ने अलंकारों को काव्य की आत्मा या सर्व प्रमुख तत्व माना है। उनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य निर्जीव है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हुए कहा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। अभिनव भरत के मतानुसार प्रबंध की सरसता ही काव्य है। प्रबंध सारस्यम काव्यम कहकर उन्होंने प्रबंध में दिव्य वस्तुओं, व्यक्तियों और व्यापारों के सरल भाषा एवं सरस शैली में वर्णन को महत्व दिया है। प्रबंध ऐसी शैली में होना चाहिए जिसमें पाठक की उत्सुकता अद्योपांत बनी रहे। अभिनय भरत का कथन है, कौतूहला विरलत्वम काव्या सारस्यम, अर्थात अनवरत कौतूहल की काव्य की सरसता है। काव्य इस प्रकार की भाषा व शैली में हो और उसका विषय इस प्रकार का हो कि पाठक के मन में कौतूहल वृद्धि होती चले और यह कौतूहल अंत तक समाप्त ना हो। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा होती है और उसका निर्वाह होता है। कविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं, जब मनुष्य प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों से ऊंचा उठकर अपने योग क्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि को भूल कर तथा अपनी पृथक मत्ता से छूट कर केवल अनुभूति मात्र रह जाता है, अर्थात जब उसके व्यक्तित्व का सामान्यीकरण हो जाता है, तब हम उसे मुक्त हृदय कहते हैं। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अंग्रेजी के विद्वानों ने भी काव्य के स्वरूप का भिन्न भिन्न रूप प्रकार से वर्णन किया है। प्रसिद्ध कवि शैली का कथन है, चिरंतन सत्य में अभिव्यक्ति जीवन की प्रतीक्षाया ही काव्य है। मैथ्यू अर्नॉल्ड के अनुसार कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। ख्याति प्राप्त लेखक एवं उच्च विचारक कार्लाइल ने कविता को संगीतमय विचार माना है। कॉलरिज ने सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्द को काव्य की संज्ञा दी है। वर्ड्सवर्थ ने कविता में प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्रमुखता दी तो कीट्स ने काव्य में सौंदर्य की उपासना को ही मुख्य माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने कविता के स्वरूप पर भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं, जिसे जो रूप ऊंचा उसी को उसने कवि काव्य की आत्मा कह डाला। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है, किंतु रीति या संगीतत्व काव्य में केवल सहायक का काम करता है। वह तो वाह प्रभाव है, तब उसे आत्मा कैसे कह सकते हैं। कुंतल ने वक्रोक्ति को ही कविता की प्राण बता डाला, या तो वैसे ही है जैसे कोई कहे कि वस्त्र ही व्यक्ति हैं। दंडी, भामह, रुद्रट और उद्भट ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। अलंकारों से शोभा बढ़ती है, प्रश्न है किसकी, अलंकारों से अलंकार की शोभा कैसे बढ़ेगी। इसके उत्तर में जो कुछ आएगा वह काव्य होगा और उसका लक्षण अलग से करना होगा। अलंकारों से शोभा बढ़ती है, वे वाय तत्व हैं। काव्य की आत्मा अलंकार नहीं हो सकते। कंकण, किंकिण और नुपुर से नारी को शोभा बढ़ती है, किंतु ये आभरण नारी की आत्मा नहीं है। इसी प्रकार आनंद वर्धनाचार्य, विश्वनाथ कविराज, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट आदि विद्वानों ने काव्य के ऊपर बहुत सुंदर विचार किया है, किंतु कविता केवल अलंकार, केवल रस, केवल गुण, केवल ध्वनि, केवल रीति, केवल वक्रोक्ति, केवल शब्द न होकर इन सब का समावय है। पाश्चात्य साहित्यकारों ने भी इसके एकांगी रूप का ही दर्शन किया है। कविता केवल जीवन की समालोचना या प्रतीक्षाया अथवा संगीतमय विचार या सर्वोत्तम शब्द ही ना होकर इन सभी तत्वों का समन्वित रूप है। ये सभी गुण काव्य के विविध रूप हैं। काव्य की शक्ति। कविता में गद्य से अधिक शक्ति होती है। कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। कवि नपुंसकों में भी शक्ति भर देता है, कायरों में भी ओझला देता है और रोते हुए को भी हंसा देता है। एक कवि ने ठीक ही लिखा है, क्लीवों के शरीरों में खौल उठता है खून, त्योरियों बदलती हैं जोश चढ़ जाता है, लेकर हथेली पर जान बढ़ता है वीर, हारी हुई बाजी को तुरंत पलटता है, होने लगता है प्रलयंकर सा नग्न नृत्य, नाश का कलेजा भी कली सा लहराता है, तीनों लोक चूमने अंगूठे लगते हैं तेरे, कवि तू संगव जब लेखनी उठाता है। उपनिषद में तो इस सृष्टि की उपमा कविता से दी गई है। इस जगत को ईश्वर की कविता कहा गया है और परमात्मा को कवि माना गया है। एक आधुनिक कवि ने अपनी कविता में इस आशय का विचार प्रकट किया है कि भगवान राम ने तो रावण को एक ही बार मारा है, किंतु तुलसी का मारा रावण हर साल जलाया जाता है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि संस्कृत के श्लोकों में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक काव्य शक्ति होती है। संसार के अधिकतर श्लोक सरल एवं सरस होते हैं। ध्रुव शब्दावली एवं विचारावली से युक्त श्लोक कठिन होने के कारण कभी कभी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने सरल श्लोक। सरल कविता की भी प्रशंसा करते हैं। प्रसंगवश महाकवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस के बालकांड में कहा है, सहज कवित कीरति विमल सी आदरही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करहीं बखान। कविता व्यक्ति के हृदय का परिष्कार करती है। यदि व्यक्ति के हृदय के आवेगों का समुचित विकास न किया जाए तो व्यक्ति पशु के समान आचरण करता है। उसमें ईर्ष्या द्वेष निराशा आदि कुभावनाओं का निवास हो जाएगा। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखते हैं, मन रमा रमणी रमणीयता मिली गई यदि यह विधि योग से, पर मिली न जिसे कविता सुधा रसिकता सिसिकता सम है उसे। काव्य का महत्व। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कविता का महत्व जीवन में अत्यधिक है, अतः कविता का पठन पाठन दोनों आवश्यक हैं। कविता को क्यों पढ़ा और पढ़ाया जाए, इसके विषय में संस्कृत के आचार्यों ने बड़े विस्तार से विचार किया है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार कविता के पठन पाठन से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों को संस्कृत में चतुर्वर्ग की संज्ञा दी गई है। स्तोत्र के पठन पाठन से धर्म राज्यश्रय प्राप्त कर कविता की रचना से अर्थ और काम तथा निष्काम भाव से कविता में प्रवृत्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों वर्गों में से जिस पुरुष की किसी में प्रवृत्ति ना हो उसके जीवन को संस्कृत में बकरी के गले के स्तन के समान निरर्थक बताया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते अजागल स्तन इस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। कविता चतुर्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, अतः कहा जा सकता है कि इससे व्यक्ति अपना जीवन सार्थक बना सकता है। आचार्य भामा ने भी काव्यालंकार में उच्च कोटि की कविता रचने से चतुर्वर्ग की प्राप्ति तथा अन्य कलाओं में दक्षता एवं कीर्ति की प्राप्ति भी बताया है। वे लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वैच क्षणम क कलासु च करोति प्रीतम कीर्ति च साधुका साधु काव्य निवंदनम। कविता से कीर्ति प्राप्त होती है। आचार्य भामा ने इस कथन से अत्युक्ति किंचन मात्र भी नहीं है। कालिदास, भवभूति, माघ, वाल्मीकि, सूर, तुलसी, मीरा, निराला, कीट्स, शैली आदि कवि कविता के द्वारा ही अपनी ख्याति प्राप्त कर सके। सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों ने धर्म की प्राप्ति काव्य से ही की। केशव, भूषण, चंद्रबरदाई आदि कवियों ने राजाश्रय प्राप्त करके कविता के द्वारा ही अर्थ प्राप्त किया। कविवर मयूर ने सूर्य का स्त्रोत रचकर अपने कुष्ठ निवारण की कामना की। काम की प्राप्ति के अन्य अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है कि आचार्य उदयन एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन की कामना से गए, किंतु वहां उन्होंने पहले दर्शन ना हो सके। आचार्य उदयन ने तुरंत ही निम्नलिखित श्लोक की रचना करके उसका पाठ किया। ऐश्वर्यम दमतोऽसि माव वज्ञाय वर्त से उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तवस्थितिया। कहा जाता है कि श्लोक के पाठ के बाद भक्ति से विवल उदयनाचार्य को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गए। वाल्मीकि, कबीर, तुलसी, सूर आदि को कविका से के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो गया। कविता के पठन पाठन से चतुर्वर की प्राप्ति उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। उपर्युक्त श्लोक के अंतिम अंश पर विचार करना आवश्यक है। उपदेश द्वारा तीन प्रकार से दिए जाते हैं। एक उपदेश बिल्कुल आदेश की तरह होता है, उसका अक्षरशः पालन आवश्यक है। राजाओं की आज्ञा वेदाज्ञा इसी प्रकार के उद्देश्य हैं। इनको ना मानने से दंड मिलता है या प्रायश्चित करना पड़ता है। उपदेश की दूसरी विधि मित्रोपदेश की है, जिसमें एक मित्र की भांति किसी कार्य की अच्छाई बुराई का वर्णन कर दिया जाता है और यह सुनने वाले मित्र की इच्छा पर है कि वह उस कार्य को करे या ना करे। पुराणों को उपदेश मित्रोपदेश हैं। तीसरा उपदेश कांता का कमनीय उपदेश है। पत्नी नम्रता, भक्ति, श्रद्धा आदि भावों से अभिभूत होकर सुंदर वचन, मधुर वाणी एवं कमनीय सूक्तियों द्वारा अपने पति को उपदेश देती हैं और अपने आकर्षण से वह पति से कार्य करा लेती हैं। तीसरे प्रकार का उपदेश मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। आचार्य मोहम्मद के अनुसार कविता में जो उपदेश दिया जाता है वह कांता के उपदेश के समान कमनीय है। कविता और पद्य। कविता और पद्य में अंतर होता है। पद्य के लिए रस आदि की नितांत आवश्यकता नहीं है। कोई भी तुकबंदी पद्य कहला सकती है। उदाहरण के लिए आगे एक श्लोक दिया जा रहा है। अलंकारम विद्याम विना, तर्क विद्याम विना, काव्य शक्तिम फलम की बुद्धस्य। बिना मात्र हस्तम, बिना भ्रातृ वर्ग, बिना गोरसम को रसो भोजनस्य। उपर्युक्त श्लोक को हम पद्य तो कहेंगे ही, किंतु इसका रसास्वादन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व नहीं है। किसी भी तुकबंदी को हम पद्य कह सकते हैं, किंतु कविता के लिए सरस होना अनिवार्य है। यद्यपि पद्य और कविता में भेद हैं, किंतु कविता पद्यमय होने से उत्कृष्ट हो जाती है। पद्य विहीन कविता को संस्कृत के आचार्य कविता मानते ही नहीं हैं। यद्यपि हिंदी में अतुकांत एवं पद्य विहीन कविताओं का खूब चलन हो गया है।